एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। आज हम आपके साथ हैं अपने 99th एपिसोड में। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1971 की चर्चित फिल्म गुड्डी का गीत बोले रे पपीहरा। वाणी जयराम की आवाज, गुलजार के बोल और वसंत देसाई का संगीत। फिल्म गुड्डी के लिए अभिनेत्री जया भादुड़ी, संगीतकार वसंत देसाई और पार्श्व गायिका वाणी जयराम का चुनाव ऋषि दा ने कैसे और क्यों किया? इस गीत की रिकॉर्डिंग होते ही वाणी जयराम को किस बात का आभास हो गया था? बचपन में बिना का गीत माला सुनते समय अपनी माँ से कही हुई कौन सी बात 25 साल बाद सच हुई? फिल्म गुड्डी में वाणी जयराम के गाए किस गीत को लता जी के गाए एक पुराने गीत से रिप्लेस कर दिया गया? वाणी जयराम लता मंगेशकर के किस गीत की रिकॉर्डिंग पर उनसे मिली? जब वाणी जयराम लता मंगेशकर के घर गईं, तब लता जी ने उपहार स्वरूप उन्हें क्या दिया? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रहे हैं मनोज मेहता।
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी प्रदर्शित हुई थी 1 जनवरी 1971 के दिन। यह फिल्म अभिनेत्री जया भादुड़ी की पहली फिल्म के रूप में याद की जाती है। फिल्म की कहानी मजेदार थी। गुड्डी नाम की स्कूल जाने वाली लड़की को अभिनेता धर्मेंद्र से प्यार हो जाता है और उनसे वह शादी करना चाहती है। ऋषिदा के मन में शुरू शुरू में गुड्डी के चरित्र के लिए मौसमी चटर्जी थी, जो उनके मित्र गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की परिचित थी और जिन्होंने उन्हीं दिनों बांग्ला फिल्म बालिका वधु में शानदार अभिनय किया था। लेकिन जब जया भादुड़ी FTII से उत्तीर्ण होकर निकली तो वो चर्चा में थी और ऋषिदा ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें लगा कि जया भादुड़ी ही उनकी गुड्डी है। आगे चलकर जया भादुड़ी और ऋषिकेश मुखर्जी ने बावर्ची, अभिमान और मिली जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में एक साथ काम भी किया। उन दिनों अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन नहीं बने थे, इसीलिए ऋषिदा ने उनका चुनाव किया गुड्डी के मंगेतर के चरित्र के लिए। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही ऋषिदा समझ गए कि अमिताभ बच्चन की प्रतिभा अप्रतिम है और इस मामूली चरित्र के लिए उनका विशाल व्यक्तित्व फिट नहीं हो रहा। रातों रात ऋषिदा अमिताभ बच्चन की जगह ले आए बांग्ला के अभिनेता समीत भंज को और अमिताभ बच्चन के साथ आनंद फिल्म करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि 16 वर्षीय गुड्डी की भूमिका निभा रही 22 वर्षीय जया भादुड़ी उस समय फिल्म के सेट पर सोफे के पीछे छुप गईं, जब वहां अभिनेता धर्मेंद्र पहुंचे, जो स्वयं के रूप में ही फिल्म में अतिथि कलाकार की भूमिका निभा रहे थे। अब आते हैं गुड्डी फिल्म के गीत संगीत पर। फिल्म की कहानी ही कुछ ऐसी थी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का अंतर सामने लाना था। वह इसलिए क्योंकि गुड्डी एक आम मध्यवर्गीय परिवार की स्कूल जाने वाली लड़की है और दूसरी तरफ है फिल्मों के महानायक धर्मेंद्र, जिनकी गुड्डी बहुत बड़ी फैन है और जिनसे गुड्डी शादी भी करना चाहती है। ऐसे में गुड्डी के मध्यवर्गीय पारिवारिक पार्श्व और उसके किरदार को वास्तविकता प्रदान करने के लिए फिल्म के गीत संगीत में फिल्मीपन को कम करना बहुत आवश्यक था। कहने का अर्थ यह है कि फिल्म जगत के व्यावसायिक रूप से सफल संगीतकारों और जानी पहचानी आवाजों को दूर रखना जरूरी था। फिल्म की स्क्रिप्ट में 3 गीतों की गुंजाइश थी जो गुड्डी गाती है। एक मध्यवर्गीय परिवार की 16 साल की लड़की किस तरह के गीत गाएगी? यकीनन मध्यवर्गीय परिवार की लड़कियों को या तो शास्त्रीय संगीत की तालीम दी जाएगी या भजन गायन की। इसीलिए तय हुआ कि फिल्म में 2 भजन और 1 शास्त्रीय संगीत आधारित रचना रखी जाएगी। सारे पक्षों पर विचार विमर्श के बाद ऋषि दा ने फिल्म के संगीत का भार अत्यंत गुणी संगीतकार वसंत देसाई को सौंपने का निश्चय किया। वसंत देसाई के साथ यह उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म गुड्डी के उन गीतों को गाने के लिए नवोदित गायिका वाणी जयराम के चुनाव के पीछे भी तर्क यही था कि लता जी या आशा जी से जया भादुड़ी का प्लेबैक करवाए जाने पर वास्तविकता कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी आवाजें प्रतिष्ठित फिल्मी आवाजें हैं। आम लड़की गुड्डी के लिए तो एक अनजानी सी आवाज चाहिए जो नवोदित अभिनेत्री जया भादुड़ी की आवाज बन सके। अब वसंत देसाई साहब ने इस फिल्म के लिए वाणी जयराम का ही चुनाव क्यों किया, यह जानने के लिए वाणी जयराम जी के ही एक साक्षात्कार का सहारा हमने लिया है। श्रेया मोहन को दिए एक इंटरव्यू में वाणी जयराम बताती हैं कि वो एक चाइल्ड प्रोडिजी रही हैं। मात्र 3 वर्ष की आयु में ही वो रागों को पहचान लेती थी और 12 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वो 3-3 घंटों के कर्नाटकी शास्त्रीय गायन के कॉन्सर्ट करने लगी थी। लेकिन अंतर मन में उनकी दिलचस्पी हिंदी फिल्म संगीत की तरफ अधिक थी। तमिलनाडु के वेल्लोर के एक रूढ़ीवादी परिवार में जन्मी वाणी जयराम की मां चाहती थी कि वो शास्त्रीय संगीत को ही चुने, क्योंकि उनके परिवार में फिल्मी गायन को अच्छा नहीं माना जाता था। जब बुधवार को रेडियो सिलोन लगाकर वाणी अमीन सयानी के मशहूर प्रोग्राम बिना का गीतमाला को सुनती तो वो अपनी मां से कहती कि देखना, एक दिन इस प्रोग्राम में मेरा गाना भी बजेगा। और उनकी मां जवाब देती कि पहले शादी करो, फिर अपने पति से कहना जो तुम्हें करना है। बचपन में कही हुई वाणी जयराम की बात सच साबित हुई जब 1972 के बिनाका गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में फिल्म गुड्डी के बोले रे पपीहरा को 21वां पायदान मिला। पच्चीस वर्ष की आयु में वाणी का विवाह सितार वादक जयराम से संपन्न हुआ। दोनों संगीत के साधक होने की वजह से दोनों में ट्यूनिंग भी खूब जमी। दोनों बंबई चले गए और वहां वाणी जयराम ने उस्ताद अब्दुल रहमान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उस्ताद अब्दुल रहमान साहब संगीतकार वसंत देसाई साहब के करीबी दोस्तों में से थे और रहमान साहब ने ही वसंत देसाई साहब को बताया कि एक दक्षिण भारतीय लड़की नई नई आई है जो अत्यंत प्रतिभाशील है। वर्ष 1970 में ही वसंत देसाई ने वाणी जयराम का ऑडिशन लिया। वाणी जयराम के पति ने ही वाणी की मां को राजी किया अपनी बेटी को फिल्मों में गाने की अनुमति देने के लिए। वाणी जयराम कर्नाटकीय शास्त्रीय संगीत में तो पारंगत थी ही, रहमान साहब उन्हें हिंदुस्तानी संगीत की तालीम भी दे रहे थे और अब वसंत देसाई साहब उन्हें फिल्मी गायन की बारीकियां सिखाने लगे। गुड्डी फिल्म के तीनों गीतों के लिए देसाई साहब ने वाणी जयराम को बड़ी मेहनत और लगन से तैयार किया और तीनों गीत पूरे परफेक्शन के साथ रिकॉर्ड भी हुए। उसी इंटरव्यू में वाणी जयराम ने बताया कि वह 22 दिसंबर 1970 का दिन था जब वो बंबई के प्रभा देवी में पहली बार किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर गईं अपने पहले फिल्मी गीत के लिए। फिल्म गुड्डी का वह पहला गीत था हरि बिन कैसे जीऊं। यह एक मीरा भजन था जिसे फिल्म में अंततः रखा ही नहीं गया। इस विषय पर हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इस गीत के रिकॉर्ड होने के कुछ महीनों बाद फिल्म का दूसरा गीत हमको मन की शक्ति देना रिकॉर्ड हुआ जो आगे चलकर देश भर के विद्यालयों में प्रार्थना गीत के रूप में काफी प्रचलित हुआ। और उसके बाद 1971 की जुलाई में यानी वर्षा ऋतु में राग मियां मल्हार पर आधारित गीत बोले रे पपीहरा रिकॉर्ड हुआ। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समाप्त होने पर वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाया और सब ने उनसे कहा कि देखना यह गीत एक सदाबहार गीत बना रहेगा। बारिश की उस शाम को जब वाणी जयराम प्रभा देवी से निकल रही थीं, उन्हें यह एहसास होने लगा कि उस दिन से उनका जीवन बदल चुका है। फिल्म गुड्डी के रिलीज होते ही जहां एक तरफ जया भादुड़ी चर्चा का विषय बन गई वहीं दूसरी तरफ वाणी जयराम के गाए बोले रे पपीहरा गीत ने चारों तरफ धूम मचा दी। घर घर में वाणी जयराम का नाम और रेडियो पर उनका गाया यह गीत गूंजने लगा। इस गीत के लिए वाणी जयराम को 5 पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत आधारित रचना का तानसेन सम्मान और ऑल इंडिया सिनेगोर्स एसोसिएशन पुरस्कार शामिल हैं। केवल हिंदी फिल्म जगत में ही नहीं बल्कि प्रादेशिक फिल्म जगत में भी उनकी खासी चर्चा होने लगी। खासतौर से दक्षिण के संगीतकार उनके लाइव परफॉर्मेंसेस में जाकर उनसे मिलने लगे और उनसे अपनी फिल्म में गीत गाने की रिक्वेस्ट करने लगे। अब हम आते हैं हरि बिन कैसे जीऊं गीत पर जिसे फिल्म में जगह नहीं मिल पाई। दरअसल बात ऐसी थी कि यह गीत फिल्म में क्लाइमेक्स सीन में आता है। ऋषि दा को लगा कि क्लाइमेक्स के लिए यह गीत सटीक नहीं है। गीत के बोल और इसका संगीत क्लाइमेक्स को उबाऊ बना देगा, इसीलिए उन्होंने इस गीत को फिल्म से हटा दिया। लेकिन समस्या अब यह थी कि इसकी जगह कोई नया गीत अब एकदम से कैसे बने। फिल्म के क्लाइमेक्स में गीत की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि गुड्डी अपने जन्मदिन की पार्टी में नवीन का इंतजार कर रही है जिसे आने में देर हो रही है। इसी सिचुएशन के लिए गुलजार साहब ने मीरा भजन सुझाया था हरि बिन कैसे जीऊं, पर ऋषिदा द्वारा एन मौके पर इसे खारिज कर दिए जाने के बाद ऋषिदा ने ही तय किया कि वे बिमल रॉय की फिल्म मधुमति के लता जी के गाए गीत आजारे परदेसी का इस्तेमाल यहां करेंगे जिसका भाव सिचुएशन के भाव से मेल खाता है। किसी फिल्म में किसी अन्य फिल्म के गीत का प्रयोग करना एक नई बात थी, इसीलिए मधुमति फिल्म के गीत का प्रयोग करने से पहले सीन में एक संवाद डाला गया कि गुड्डी कोई फिल्म का गाना गाओ वरना लोग बोर हो जाएंगे। और तब गुड्डी गा उठती है आ जा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार। लता जी के गाए मूल संस्करण का ही प्रयोग किया गया जो थोड़ा अजीब भी लगा। अब जब लता जी का जिक्र छिड़ ही गया है तो आपको यह भी बता दें कि वाणी जयराम जी और लता जी के बीच का संबंध कैसा था। लता जी के निधन की खबर सुनकर वाणी जयराम काफी परेशान हो उठी थीं। और क्यों ना हो, जिनके गाए गीतों को सुनकर बड़ी हुई हो और जिनके गाए गीत ही उनके संगीत जगत में आने का कारण बने हों, उस गायिका के निधन पर विचलित होना तो स्वाभाविक ही है। यूं तो लता जी के गाए सारे गाने वाणी जी को पसंद थे, पर ओ सजना बरखा बहार आई और प्यार किया तो डरना क्या उनकी खासी पसंद थी। अपने कॉलेज के दिनों में वाणी जयराम लता जी के ही गाने फंक्शंस में गाया करती थीं। उनके फेसबुक पेज पर साल 2018 में वाणी जयराम ने लिखा था कि बचपन से ही वे रेडियो पर बजने वाले लता जी के तमाम गीतों को बड़े ध्यान से सुना करती थीं। उनकी गायकी की बारीकियों को समझती थीं। तभी से उनका सपना था कि बंबई की फिल्मों में गाने गाएं और लता जी से आशीर्वाद लें। उनका पहला सपना तो फिल्म गुड्डी से पूरा हो गया और दूसरा सपना साकार करवाने में संगीतकार जयदेव जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हुआ यूं था कि जब फिल्म प्रेम पर्वत के प्रसिद्ध गीत ये दिल और उनकी निगाहों के साए की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तब जयदेव जी ने वाणी जी को रिकॉर्डिंग में आने का न्योता दिया ताकि वे लता जी से मिल सकें। वाणी ने पूरी रिकॉर्डिंग को करीब से देखा और उसके बाद लता जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। लता जी ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब वाणी जी लता जी के पेडर रोड वाले घर पहुंची तब लता जी ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद तो दिया और उन्हें एक बनारसी सिल्क साड़ी भी उपहार स्वरूप दी। वाणी जयराम बताती हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे लता जी के जीवन काल में पली बढ़ी और लता जी से कई बार मिलने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर यह कहा जाता है कि लता जी और आशा जी की वजह से नई गायिकाएं बंबई में अपने कदम नहीं जमा पाईं। सच्चाई यह है कि लता जी और आशा जी की आवाजों में ऐसी चमक है और उनकी गायकी इतनी पक्की कि हर निर्माता, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर संगीतकार अपने गाने इन्हीं से ही गवाना चाहते थे। अब इसके लिए किसे दोष दिया जाए? वाणी जयराम भी जल्दी ही यह बात समझ गई थी कि बंबई में उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों में ही गाने के मौके मिल पाएंगे, इसीलिए उन्होंने दक्षिण की तरफ मुड़ने में ही अपनी भलाई समझी और उनका यह निर्णय लाभप्रद भी साबित हुआ। उन्होंने दक्षिण में हजारों गीत गाए और एक अव्वल पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित हुई। आज उनके इस दुनिया से चले जाने पर फिल्म संगीत के आकाश का एक चमकता सितारा डूब गया।
और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चटर्जी का था, वाचन स्वर मनोज मेहता का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
Radio Playback India.